समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा।
नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हस्ब दस्तूर हमला है आपके लिए ताजा तरीन खबरें एंड सिंस इट्स अ न्यूज मैगजीन तो खबरों के अलावा और बहुत कुछ भी होगा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड सी व्हाट इज द लेटेस्ट बज दैट इज हैपनिंग। एंड अब तो त्योहारों का जो है सिलसिला शुरू हो गया आकर्षिता, द फेस्टिव सीजन हैज बिगन, सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आर कमिंग इन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। बट फर्स्ट आकर्षिता, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए गिनती जारी।
Entrants available so far, Bharatiya Janata Party is ahead in Haryana, while National Conference Congress Alliance leads in Jammu and Kashmir.
आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की रक्षा में भारतीय वायुसेना की व्यावसायिकता और भूमिका बेहद सराहनीय है।
And in Women's T20 Cricket World Cup, Australia to take on New Zealand in a Group A match at Sharjah this evening. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. And we all know that today is Air Force Day. Indian Air Force Day is being celebrated today, a day dedicated to honoring the servicemen and pilots who have sacrificed their lives for the nation and commemorating the establishment of the Indian Air Force. This year marks the 92nd anniversary of the Indian Air Force. The celebrations will include various events showcasing IAF's capabilities and achievements. Key attendees for the upcoming Indian Air Force Day include Defence Minister Rajnath Singh and Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin.
आसमान में गर्जना, चारों दिशाओं में गूंजता ये विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। आसमान की बातें तो अविस्मरणीय होती ही हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारतीय वायुसेना आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देते हुए हमें सुरक्षा का एहसास दिलाती है। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मना रहे हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली वायुसेनाओं में शामिल हो चुकी है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बताया है कि अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। देश की सुरक्षा और हितों के समक्ष आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वायुसेना अब पूरी तरह से तैयार है।
Yes, of course, the Indian Air Force serves as a major platform honoring the sacrifices and dedication of the Indian Air Force and its personnel protecting our motherland and the people. People honor the Indian Air Force, which plays a key role in national security and contributes to the rescue operations in natural disasters, actively engaging in humanitarian operations.
इस वर्ष भारतीय वायुसेना का कार्यक्रम भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर थीम पर आधारित है, जो देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय वायुसेना का देश की सुरक्षा में बड़ा योगदान रहा है और देश की वायुसेना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी और आज ये एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली वायुसेना बन चुकी है। भारतीय वायुसेना दिवस देश के वीर जवानों के साहस और बलिदान को याद करने का दिन है। यह दिन वायुसेना की उपलब्धियों को मनाने का भी अवसर है। इस साल वायुसेना दिवस की 92वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।
On the occasion of the 92nd anniversary of the Indian Air Force, a 4,300-kilometer mega car rally was flagged off from the air base in Ladakh this morning, and the rally will culminate at Tawang Air Force Station in Arunachal Pradesh on 29th of October. We have a report.
The Vayu Veer Vijeta car rally was flagged off by the Minister of State for Road Transport and Highways, Harsh Malhotra, alongside West Delhi member of Lok Sabha, Kamaljit Sehrawat. Organized by the Indian Air Force in collaboration with Uttarakhand War Memorial, the rally aims to raise awareness about the IAF's rich history, its rescue missions and the valor of air warriors to inspire youth to serve the nation. 52 IAF personnel, including women, are participating in the event, which also features former Air Force chiefs joining in on different legs of the journey. Along the way, the Air Warriors will make several stops to engage with students at various colleges and universities. This rally will be a significant step in inspiring the youth to pursue career in Indian Armed Forces. For Akashwani News, Muzaffarwani reporting from Thais Air Base in Ladakh.
भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को अविभाजित भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था, जिसके लिए किंग जॉर्ज सिक्स ने इसे रॉयल का प्रीफिक्स दिया था। लेकिन भारत की आजादी के बाद जब देश गणराज्य बना, तब ये प्रीफिक्स हटा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय वायुसेना ने कुल 5 युद्ध लड़े, जिनमें 4 पाकिस्तान के साथ और 1 चीन के साथ हुआ। 1948, 1965, 1971 और 1999 के भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन के साथ 1962 के युद्ध में भी वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। इसके अलावा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी प्रमुख घटनाओं में भी भारतीय वायुसेना का अहम योगदान रहा। इस बार वायुसेना दिवस परेड और हवाई प्रदर्शन 8 अक्टूबर को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ। मुख्य कार्यक्रम चेन्नई के ताम्बरम एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर थल रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने झंडा फहराया और वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली वायुसेना की यूनिटों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किये।
And yes, now we'll be true to the spirit of our show, यानी कि अब हम लोग निकलेंगे देश की परिक्रमा पे। तो इस सिलसिले में, इस जर्नी में सबसे पहला पड़ाव कौन सा है आकर्षिता?
तो इस जर्नी में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जयपुर में एक नया बायोलॉजिकल पार्क जो शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल फीता काटकर बायोलॉजिकल पार्क का लोकार्पण करेंगे। प्रदेशवासियों को मिली इस सौगात से अब वन्य जीव प्रेमी अब जयपुर में भी टाइगर सफारी का आनंद ले सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 2 बाघ शावकों का नामकरण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मादा बाघ शावक का नाम स्कंदी तथा नर बाघ शावक का नाम भीम रखा।
4,53,00,000 रुपए की लागत से 30 हेक्टेयर में बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया गया है, जिसमें लोग टाइगर सफारी का आनंद ले सकेंगे। इस टाइगर सफारी में 7 किलोमीटर का सफारी ट्रैक विकसित किया गया है। यह सफारी सैलानियों को प्राकृतिक वातावरण में बाघों की खूबसूरती को अनुभव करने का अवसर देगी। इससे आम लोगों में बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता का प्रसार होगा। प्रदेश में 3 नेशनल पार्क, 26 अभयारण्य, 36 कंजर्वेशन रिजर्व तथा 4 बायोलॉजिकल पार्क विकसित हो चुके हैं। बाघों के संरक्षण के प्रयासों से प्रदेश में टाइगर की आबादी बढ़ रही है। राजस्थान राज्य में लगभग 130 बाघ हैं। परिक्रमा के लिए जितेंद्र की रिपोर्ट के साथ पायल शर्मा।
And the land of festivals, Nagaland, gears up for its annual Hornbill Festival 2024 at Naga Heritage Village, Kisama, one of India's most vibrant cultural festivals. Every year, the festival is celebrated in a grand manner for 10 days that it even got the nickname The Festival of Festivals. This festival is set to begin on 1st December this year and will mark its Silver Jubilee celebration. The Nagaland government has also roped in Wales as one of the country partners for the upcoming Hornbill Festival. We have more details from our correspondent.
Active preparations are going on for the state of Nagaland to host one of the country's biggest festival, the Hornbill Festival. Preparation for the festival are being overseen by the ministerial level committee headed by the Chief Minister of Nagaland. To enhance the festival experience, revamping of infrastructure at the Naga Heritage Village are taking place, while mass social work initiatives are planned for the last week of October and the third week of November, clean and beautify areas from Dimapur to Kisama. Commissioner and Secretary, Tourism Department, Government of Nagaland, Dr. G. Rukuga Sema said,
"In the present edition, we'd like to take tourists as our honor guests. So, on that matter, we have to make our best efforts to make our place comfortable and enjoyable. And in this regard, we have started with a master plan for Kisama, Naga Heritage Village, renovation and revamping of all the structures and many other areas. And in the next coming years, from next year onwards, Kisama Village will be open 24/7. So tribal halls and murals will be very much instrumental in making it a success."
Meanwhile, Chief Minister Nipi Rio has announced the signing of an agreement making Wales one of the country partners of the 25th edition of the Hornbill Festival. Mr. Rio signed the agreement during an official visit to Wales earlier on the first week of October. The visit was also the first for a Chief Minister from India to visit Wales officially. The Hornbill Festival began in 2000 as a modest three-day event in Kohima. The festival has since evolved into a major tourism event for Nagaland, now spanning 10 days. In these 10 days, visitors get to experience tribal living, food, traditional games, music and dance, and the best of the local handicrafts and textile. The festival is not only popular in India, but also on an international level as well. Every year, visitors from all over the world visit Nagaland to be a part of this cultural celebration. For Parikrama, this is Asunyo from Akashwani News, Kohima.
And Akarshita, India is a country of villages. We must strengthen our villages if we want to develop India as a developed nation. Recently, the Union Tourism Ministry has declared the winners of best tourism villages in the country. Haveshwar, which is a small village in the tribal-dominant Chota Udaipur district of Gujarat, won the Best Tourism Village Award under the Heritage category. Tapping its tourism potential, the state government has allocated 10 crore rupees grant for its development. We have a report.
Haveshwar, a small village in the tribal-dominant Chota Udaipur district of Gujarat, which is situated on the banks of River Narmada, is adorned with natural beauty. Last year, more than 1 lakh people who had come to visit the iconic Statue of Unity also visited the village to enjoy its serene nature. Talking to Akashwani, District Collector of Chota Udaipur, Anil Dhamulia, said the recent award will definitely boost tourism activities in the village.
Tourism Ministry of Government of India has recognized Haveshwar as a best tourist village amongst cultural heritage category in 2024. This is a great moment for Chota Udaipur district and Gujarat state. Haveshwar is a place lies among a lake of nature. It is surrounded by Satpura Range, Vindhyachal Range as well as Arvali Range. It lies at the trijunction of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. Inland Waterway Authority of India has proposed inland jetty at that place. Basically, it lies among express waterway of Narmada River. We have also proposed widening of road at that place, and this recognition will boost potential of tourists, not just this area, but surrounding tourist spots also, like Nakhal Stream, as well as Darsamil Waterfall and Ali Mohan Stockwell and many other places.
Sanjay Ratwa, the Patwari of the village, thanked Union Government for this recognition.
Gujarat Rajya ke Chota Udaipur jile ke Kamar Tehsil ke Haveshwar gaon mein Bharat Sarkar Paryatan Vibhag se Haveshwar gaon ka Best Paryatan Village ka award mila hai. Is gaon ko award milne se gaon ka ajivika, gaon ka development mein bahut yogdan milega.
With Rajesh Ratwa from Chota Udaipur, this is Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
And we go further down south to Vijayawada, where the spiritual fervor is spread all over the state of Andhra Pradesh during the festive season of Dasara. Lakhs of devotees are making their way to the sacred shrines. The grand Brahmotsam at Tirumala is being celebrated with daily religious processions and countless rituals. बहुत ही वहाँ का समा ही कुछ और होता है आजकल आकर्षिता.
Right.
तो क्यों ना अपने संवाददाता से और details जानते हैं.
The spiritual fervor is spread all over the state of Andhra Pradesh during this festive season of Dasara. Lakhs of devotees are making their way to the sacred shrines. The grand Brahmotsavam at Tirumala is being celebrated with daily religious processions and countless rituals. Every day, this festival is completed by sending processions of idol of Sri Venkateswara Swami in different vahanas. Among all the chariots, highly venerated Garuda Vahana Seva, which is expected to attract a huge pilgrimage, will take place today. On the other hand, in Vijayawada, grand Dasara celebrations are taking place at Indrakila Durga Malleswar Swami Temple. Thousands of devotees are flocking to seek the blessings of Goddess Kanaka Durga during this auspicious time. Meanwhile, in Srisailam, devotees are thronging to get divine blessings from Mallikarjun Swami and Brahmaramika Amma. Vahana Sevas, along with special Alamkarams, are conducted daily during this festival season. In Vijayanagaram, the historic festival of Siriman Utsavam, celebrated in the honor of Goddess Paidithali Amma, sees the famous Siriman procession take place where the temple priest is paraded on the sacred log. Government officials are working tirelessly in providing security, infrastructure, transport and other arrangements at pilgrimage centers across the state. The blend of history and spiritual practices during this season of Dasara creates an atmosphere where devotees feel connected to both divine and the ancient heritage of their region. Sai Sishla for Parikrama, Akashvani, Vijayawada.
और सायरा, अब तो दिल्ली में भी त्योहारों की तैयारियां शुरू हो गई हैं. मेले, मिठाइयां और खुशियों का सिलसिला शुरू हो गया है और दिवाली से पहले दीपोत्सव की तैयारियां भी जोरों पर हैं दिल्ली में.
यस, एब्सोल्युटली. द मनस्विनी दीपोत्सव विच इज ऑर्गेनाइज बाय द न्यू मोतीबाग लेडीज क्लब विच इज मच मच लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी इवन मोर ग्रैंड, इवन बिगर, इवन बेटर. एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव विद अस द सेक्रेटरी ऑफ मनस्विनी मिस मीनाक्षी Agarwal with us on the telephone, who will tell us more about it. Meenakshi ji, namaskar. Welcome to our show Parikrama. Please tell our listeners what to expect at this year's Deepotsav.
थैंक यू सायरा जी. हमारा दीपोत्सव पिछले 10 साल से चल रहा है और इस साल हम उसको दो दिन का इवेंट कर रहे हैं. दीपोत्सव हमारा बहुत ही मनस्वनी, हमारी एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है न्यू मोतीबाग लेडीज क्लब, उसके अंतर्गत हम हर साल दो दिन का या एक दिन का मेला करते हैं और इस साल वो मेला हमारा दो दिन का हो रहा है. इस मेले में हम स्मॉल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत हेल्प करते हैं, उनको बहुत रीजनेबल रेट्स में स्टॉल देते हैं और हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. वी वॉन्ट टू हेल्प स्मॉल वुमेन entrepreneurs because we are a women organization and at the same time हमारे यहाँ बहुत अच्छी cultural activities होती हैं शाम को, जिसमें हम special लोगों को बुलाते हैं और इनमें एक special लोग है हमारे दिव्यांग artist. वो सक्षम है, समर्थ है, आत्मनिर्भर है. वो एक इनका show देखने से ये सब हमको समझ आता है और एक हम एक दिव्यांग इंसान को कुछ अलग दृष्टि से देखते हैं, वो हमारा दृष्टिकोण वो show देखने के बाद एकदम बदल जाता है. उसके अलावा यहाँ पर खाने के लिए भी हमने small women entrepreneurs जो अपना house और फूल या छोटी क्लाउड किचन से कर रहे हैं, उनको भी हमने बहुत बढ़ावा दिया है. आप हमारे मेले में आइए और आप देखेंगे कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिन्होंने फूड स्टॉल लगाया है. देयर आर पीपल हु आर डूइंग दिस पैशनेटली. द पैशन इज बीइंग रिफ्लेक्टेड देयर. इट्स नॉट अ मेजर कमर्शियल एक्टिविटी, इट्स द पैशन विच इज शोन हेयर इन द मेला.
राइट. सो मीनाक्षी जी, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वुड बी सीन इन दिस दीपोत्सव?
दीपोत्सव में आप प्रोडक्ट्स बोले तो क्या नहीं है दीपोत्सव में, मेरे लिए ये बताना मुश्किल है क्या है. सब कुछ है. 100 से ज्यादा स्टॉल हमारे आ रहे हैं आपके पास. घर की सजावट, खुद को सजाने का सामान, क्या है वो साड़ी हो, सूट हो, जेवर हो, आप मतलब जिस तरह आप दीपोत्सव में आएंगे, आपके अंडर वन रूफ इन टू डेज यू कैन डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शॉपिंग फॉर योर दिवाली एज वेल एज फॉर योर रूटीन थिंग्स ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस. और एक चीज और मैं इस दीपोत्सव में बताना चाहूंगी कि हमारी जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, CISF, BSF, दिल्ली पुलिस, ITBP एंड CRPF, इन सबके हमारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज वर्किंग टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द वुमेन. सो उनके भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं. ये मेला दिल्ली का सबसे अलग मेला है. कहीं भी आपको इस तरह के स्टॉल्स नहीं मिलेंगे एक बार में. साथ में जो शाम को कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, यह एक मेला ऐसा है जो खाली कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, यह एक मेला है जिसमें आपको अपना फन मिलेगा.
जी विनायक श्री जी, सो आई एम श्योर दैट डेनिजन्स ऑफ दिल्ली आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीकेंड. इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीकेंड. एंड जस्ट टू टेल आवर लिसनर्स, अगर आप बता दें कि इन दोनों दिनों में 3 से 4 बजे तक कुछ खास आप उनको वो दे रही हैं फ्रीबी, इजंट इट?
बिल्कुल सही कहा सायरा जी आपने. 3 से 4 बजे हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया. हैप्पी आवर्स शॉप्स पे होते हैं, हमने हैप्पी आवर्स अपने मेले में रखे हैं. उस समय शॉपिंग करेंगे तो कोई कहीं आपको डिस्काउंट मिलेगा, कहीं गिफ्ट मिलेगा. सो 3 से 4 का समय तो बहुत क्रूशियल है शॉपर्स के लिए. दे कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी.
Well, thank you, Meenakshi ji, for joining us. And I'm sure that everyone, especially in Delhi, have marked their calendars for Saturday and Sunday, that is 12th and 13th of October. Please do go ahead to Central Park, New Modi Park, for this Deep Utsav. And now it's time for Azadi Ka Safar.
8th October is the death anniversary of a great freedom fighter, revolutionary and crusader, Jayaprakash Narayan, who was popularly called JP. It is said the nationalist leader Maulana Abul Kalam Azad's call to lift up to the skies like leaves before a storm drew JP to the freedom movement. Maulana Azad had called for giving up English education. Jayaprakash took his words to heart and left Patna College with just 20 days remaining for his examination and joined Bihar Vidya Peeth, a college run by the Congress. After completing his course, he decided to go to the United States for further studies, where he took up odd jobs to pay for his college fee. As a result, he developed a natural affinity towards the working class, which remained all through his life.
JP, also known as Lok Nayak, returned to India in 1929 and called upon the people to take advantage of the World War II to stop the British exploitation of India and to overthrow the colonial government. He protested against the recruitment of Indian soldiers for the British Army and was imprisoned for 9 months. After his release, he met Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose.
JP joined the Congress at the invitation of Pandit Jawaharlal Nehru. He was also a member of the Congress Socialist Party, which worked underground to promote the campaign for freeing India from British rule. He actively participated in the freedom struggle and led the Quit India movement in 1942, when all the senior leaders had been arrested. He, too, was soon arrested under the Defense of India Rules, a preventive detention law that did not require trial. He was put in the Hazaribagh Central Jail. JP and his fellow prisoners planned to escape from the jail. Their chance came soon on Diwali in November 1942, when a large number of guards were on leave because of the festival. It was a daring escape which made JP a folk hero.
After nearly 1 year of hunt, JP was arrested in Amritsar on September 18, 1943, while on his way to Rawalpindi to meet Frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan. He was taken to Lahore Fort, which was notorious as a torture chamber. 16 months of mental and physical torture followed. JP was put in solitary confinement for the first month. This was followed by interrogation, physical torture and humiliation. In January 1945, he was transferred from Lahore Fort to Agra Jail. When Mahatma Gandhi insisted that he would begin negotiations with the British rulers only after an unconditional release of Ram Manohar Lohia and Jayaprakash, they were released on 12th April 1946. JP breathed his last on 8th October 1979 in Patna. He dedicated himself totally to Mahatma Gandhi's ideal of Sampurna Swarajya, or total revolution.
Unch neech par aadharit jati pratha ko khatm kiya jaye. Ab samay aa gaya hai is kalank ko mita de aur bhai chare aur samanata ko apna aadarsh banaye aur apne jeevan mein utare. Isi tarah shaadi janm mrityu se jude hue bhi kuch aur bure rivaaj hain.
JP pursued his efforts towards people's participatory governance and corruption-free, value-based public life. His integrity, towering reputation, and his self-effacing simplicity endeared him to the nation.
Time for business news now. Domestic benchmark indices rebounded today, snapping its 6-day losing streak. The BSE Sensex advanced over 500 points, while the Nifty 50 settled above 25,000. At close, the Sensex increased by 585 points to close at 81,635, while the Nifty gained 217 points to settle at 25,013.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ग्रुप ए का ये मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अपने शुरुआती मैच जीते हैं। कल शारजाह में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में केवल 124 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने 7 विकेट और 4 गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।
Right, and now it's time to remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries. और आज की फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है मुंशी प्रेमचंद का।
मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिखना लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। ये पंक्तियां हैं मुंशी प्रेमचंद की। आज भारतीय उपन्यास सम्राट, कहानीकार तथा प्रसिद्ध लेखक व अपनी रचनाओं से समाज में व्याप्त समस्याओं को दर्शाने वाले आधुनिक हिंदी के पितामह प्रेमचंद की पुण्यतिथि है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक का है। ये कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्व का है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरा। मुंशी प्रेमचंद अपनी रचनाओं की रूपरेखा अंग्रेजी में तैयार कर इनका अनुवाद हिंदी और उर्दू में किया करते थे। इन्होंने गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि जैसे कई कालजयी रचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं का अनुवाद रूसी और चीनी जैसी भाषाओं में भी किया गया। उन्होंने कहा था कि हमारे मुंह की रोटी कोई छीन न ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। उनकी पुण्यतिथि पर आइए आज सुनते हैं आकाशवाणी पर प्रसारित उनकी मशहूर कहानी ईदगाह पर आधारित रेडियो नाटक के ये अंश।
सुन, ये क्या है? चिमटा?
तीन पैसे का?
तूने पूरे पैसे इसी पे खर्च कर दिए? इसकी क्या जरूरत थी है?
या अल्लाह, मैंने तुम्हें 3 ही तो पैसे दिए थे बेटा, और कहा था कि कुछ खा लेना,
और तू दिन भर भूखे घूमता रहा, और लिया भी तो तू क्या चिमटा है?
दादी, जब आप रोटी बनाती हैं तो आपका हाथ जल जाता है। आपका हाथ न जले इसलिए मैं चिमटा ले आई।
मेरा बच्चा, मेरा लाडला।
आई एम श्योर ऑल आवर लिसनर्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बैक टू देयर चाइल्डहुड। और हम सब ने ये कहानी जब पढ़ी थी स्कूल में या अपनी नानी दादी के मुंह से, तो सब लोग जो है उस चिमटे को अलग ही तरह से देख
रहे थे। बहुत इमोशनल हो गए थे और हम सोच रहे थे कि हम रहते तो हम क्या करते उस समय पे।
दैट्स वेरी ट्रू। एंड प्रेमचंद वॉज अ पायनियर ऑफ हिंदी एंड उर्दू सोशल फिक्शन। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑथर्स टू राइट अबाउट कास्ट हायरार्कीज एंड द प्लाइट ऑफ वुमेन एंड लेबरर्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी ऑफ द लेट 1880s. He is one of the most celebrated writers of the Indian subcontinent and is regarded as one of the foremost Hindi writers of the early 20th century. और ये प्रेमचंद का ही आप कह सकते हैं स्टैचर है या उनकी एक्सलेंस है और या फिर हमारी सोसाइटी की विडंबना भी है कि आज भी प्रेमचंद उतने ही रेलिवेंट हैं जितने उस वक्त थे, क्योंकि आज भी जो है कास्ट के नाम पे, जात पात के नाम पे, क्लास के नाम पे और पेट्रियार्की के नाम पे आज भी बहुत से लोग जो है शोषित हैं अनफॉर्चुनेटली। सो प्रेमचंद वॉज रेलिवेंट देन एंड ही इज रेलिवेंट इवन नाउ।
आज अभिनेता राजकुमार की जयंती है। इनका वास्तविक नाम कुलभूषण पंडित था, लेकिन भारतीय सिनेमा में इन्हें राजकुमार के नाम से जाना गया। पारंपरिक पारसी थिएटर की संवाद अदायगी को इन्होंने अपनाया और यही इनकी विशेष पहचान बनी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये मशहूर अभिनेता कभी मुंबई के माहिम थाने में अधिकारी हुआ करते थे और फिर निर्माता बलदेव की नजर एक दिन इन पर पड़ी और वो राजकुमार के अंदाज से काफी प्रभावित हुए। इन्होंने फिल्म रंगीनी से अपने करियर की शुरूआत की, पर इन्हें पहचान मिली फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई घराना जैसी फिल्मों से। वर्ष 1965 में बीआर चोपड़ा की फिल्म वक्त अपने लाजवाब अभिनय से उन्होंने दर्शकों का खासा ध्यान आकर्षित किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये डायलॉग।
हमें देवता मत कहो बाबा, हमें अमीरों की ताकत का नहीं गरीबों की कमजोरी का एहसास है, और फिर देवता तकदीर बनाते हैं जो उनके हाथ में है, हम तो सिर्फ तकदीर बताते हैं। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो, कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना।
राणा साहब, इंटरव्यू?
हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है।
गोवर्धन सेठ आए हुए हैं।
So we can see that peculiar attitude of Rajkumar ke humare seedhe letter of appointment milta hai and I wish we could have played that Jani dialogue as well jo unse mansoob ho gaya and with that it's time to call a wrap to the show to isi ke saath ijazat dijiye Akarshita aur Saira ko namaskar.